ललाभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन जारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद तिल प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य स्तोत्र सत्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इसकान संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, समवेत भक्त वृंद की, गौर हरि प्रेम आनंद श्री श्री राधा गिरधारी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। यन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्वीर्यै मा पुरो विभो निरमाय शेते यदमोऽसु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मां मनभीत्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखे सनातनं तं पुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो सब लोग बोर्ड पर देख करके हमारे पीछे बोलिए प्रयास पूर्वक, अन्याभिलाषिता शून्यम्, अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान क्रमाद्यनावृतम्, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, 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 आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। माताजी, अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञान कर्माद्यनावृतम्, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। श्लोक अधिकांश लोगों से परिचित है, अधिकांश लोग इस श्लोक को जानते हैं। यद्यपि ये परिचित श्लोक है, लेकिन इसके बावजूद भी इस श्लोक में बहुत बातों के तरह ध्यान नहीं गया होगा। तो यहाँ समय का अभाव है, इसलिए मैं पूरे श्लोक को न लेकर के इस श्लोक के कुछ अंश को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ये आप लोग अपेक्षा मत रखिएगा कि 2 बजे के पहले मैं पूरे श्लोक को समझा दूं। आप इस श्लोक में भक्ति की परिभाषा देख रहे हैं। इस श्लोक का मूल अंश, मूल वाक्य ग्रहण किया जाए तो वह होगा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। और इसको छोटा करके लेंगे तो कृष्णानुशीलनम भक्ति, और छोटा करेंगे तो मूल वाक्य होगा शीलनम भक्ति। भक्ति का क्या अर्थ है? सीलन। लेकिन इतना कहने से कोई अर्थ नहीं निकला। तुरंत पूछेंगे आप लोग कि ये सीलन का क्या अर्थ है। शब्द आ रहा है कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, और जैसा बोर्ड पर लिखा गया है आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, यह एक शब्द है कृष्णानुशीलनम। इसका विच्छेद करेंगे तो कृष्ण अनुशीलनम होगा, या इसको कृष्णानुशीलनम ऐसे भी अलग कर सकते हैं। और भक्ति का अर्थ है अनुशीलन, जैसा बोर्ड पर लिखा गया है वैसे अर्थ लेंगे तो भक्ति का अर्थ है अनुशीलन। और शीलन का अर्थ होता है चेष्टा। धातु से अर्थ करेंगे तो ये शील शब्द है, शीलन शब्द है, तो इसका अर्थ चेष्टा रूप होगा, कुछ चेष्टा करना। चेष्टा समझ रहे हैं ना, कुछ प्रयास करना, कुछ क्रियाशील होना। ये भक्ति आलस्य नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोशनल सर्विस इज नॉट इडलनेस। ये केवल चुपचाप पड़े रहना यह भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है अनुशीलन, कुछ चेष्टा करना, कुछ प्रयास करना, क्रिया करना। यह अनुशीलन शब्द का अर्थ है, शीलन शब्द का अर्थ है। तो अनुशीलन का अर्थ होगा निरंतर चेष्टा करना। अनु शब्द निरंतर के अर्थ में आता है, कंटिन्यूअस के अर्थ में आता है। तो भाई चेष्टा तो सब लोग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक क्रियाशील हैं, तो क्या इसको भक्ति कह दिया जाएगा? कुछ लोग कहते भी हैं वर्क इज वर्क, लेकिन ना, कम से कम इस श्लोक में ऐसा अर्थ नहीं है। कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए अनुशीलन करना यह भक्ति है। जिस क्रिया का कृष्ण से संबंध नहीं है उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। और कृष्ण का संबंध लेकर के जो चेष्टा है उसको भक्ति कहा जाता है। और इतना ही नहीं, आनुकूल्येन, जब अनुकूल भाव से कृष्ण के लिए चेष्टा करेंगे या कृष्ण से संबंधित चेष्टा करेंगे तो इसको भक्ति कहा जाएगा। और इस भक्ति के लिए 2 विशेषण दे रहे हैं, अन्य इस अनुशीलन के लिए 2 विशेषण दे रहे हैं, कृष्णानुशील के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम। हम कृष्ण के संबंधित चेष्टा कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो इस अभ्यास को छोड़ करके इसके अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है तो उसको कहा जाएगा अन्याभिलाषिता शून्यम। वह अभ्यास जिसमें अन्य अभिलाषा शून्य है। और दूसरा विशेषण दे रहे हैं ज्ञान कर्माभ्य अनावृतम, और यह अभ्यास यह चेष्टा ज्ञान और कर्म कांड से अनावृत होना चाहिए। शून्य नहीं कह रहे हैं, कुछ ज्ञान का अवसर है, अवकाश है, कुछ कर्म का अवकाश है, लेकिन वह इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह कृष्णानुशीलन ही ढक जाए, ये कवर नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा करते हैं, ये दो विशेषता के साथ कृष्णानुशीलन कर रहे हैं अनुकूल भाव से, तो यह होगा उत्तमा भक्ति। यदि दो विशेषण है, भाव अनुकूल है, तो इसको कहा जाएगा उत्तमा भक्ति। तो ये सामान्य रूप से इस श्लोक का अर्थ है कि अन्य कामना से शून्य होकर अनुकूल भाव से ज्ञान कर्म से अनावृत कृष्ण के लिए कुछ निरंतर अभ्यास किया जाए, प्रयास किया जाए, चेष्टा किया जाए, तो वह उत्तमा भक्ति है। और जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं कृष्ण अनुशीलन, लेकिन वो जो कृष्णानुशीलन शब्द है, कृष्णानुशीलन ऐसे भी रख सकते हैं। तो जैसा मैं बतलाया कि अनुशीलन का अर्थ है निरंतर गंभीर रूप से कृष्ण के लिए कुछ क्रिया करना, कुछ चेष्टाशील होना। तो यह जो शीलन शब्द है, अनुशीलन शब्द है, तो इसका दो पक्ष होता है, एक को प्रवृत्त्यात्मक कहते हैं, एक को नित्यात्मक। हम कुछ चेष्टा करते हैं तो कुछ पॉजिटिव वे में करते हैं और कुछ चेष्टा निगेटिव वे में करते हैं। कुछ चीज का संकल्प करते हैं और कुछ चीज का वर्जन करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कोई क्रिया है, जैसे जाने की क्रिया है, तो हम जाने की क्रिया करते हैं तो कहीं नजदीक पहुंचते हैं, किसी स्थान के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके साथ ही किसी स्थान का त्याग भी करते हैं। तो यह जो चेष्टा है, ये जो भक्ति चेष्टा रूप है, तो इसके दो पक्ष हैं। इसमें प्रवृत्ति होती है, एक में निवृत्ति होती है। कुछ चीज को अनुकूल भाव से ग्रहण करना होता है और कुछ चीज को छोड़ना होता है। कुछ ग्रहण करने के लिए चेष्टा करना होता है और कुछ छोड़ने के लिए चेष्टा करना होता है। चेष्टा के दो पक्ष हैं। चेष्टा के तीन स्तर हैं, पक्ष दो हुआ, स्तर तीन हुए। कुछ चेष्टा शारीरिक स्तर पर किया जाता है, शरीर से चेष्टा करते हैं, जैसे चामर डुलाना है, माला बनाना है, शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। और कुछ चेष्टा मन से किया जाता है, मन से भी कुछ चेष्टा करते हैं ना, जैसे जिसको कोई गणित सोल्व करना है तो गणित सोल्व करने के लिए टोटल मन से ही चेष्टा करता है, कलम से लिखता है, लेकिन वो जो चेष्टा चलता है पूरा मन ही मन चलता है। जो मन में चेष्टा है, जो फल आ रहा है उसको हाथ से लिख देते हैं, चेष्टा तो मानसिक स्तर पर ही चलता है। तो यह जो चेष्टा है भक्ति में, एक तो ये शरीर के स्तर पर होगा, फिर मन के स्तर पर होगा, और फिर वाणी के स्तर पर। तो इस चेष्टा का तीन स्तर है, शरीर का शारीरिक स्तर पर, वाचिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। और ये तीनों स्तर पर दोनों पक्ष लागू होगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो शारीरिक चेष्टा भी प्रवृत्त्यात्मक होगा और निवृत्त्यात्मक होगा, और मानसिक चेष्टा भी प्रवृत्त्यात्मक होगा और निवृत्त्यात्मक होगा, और वाचिक चेष्टा भी। समझ रहे हैं ना, जैसे भक्ति में हम कुछ शरीर से कार्य कर रहे हैं और कुछ कार्य शरीर से कभी नहीं करना होता है। जैसे हिंसा है तो इसका त्याग करना होता है, किसी जीव का वध है तो इसका त्याग करना होता है। भक्ति में दोनों प्रकार की चेष्टा आवश्यक है और यही बात मानसिक स्तर पर ही है। कुछ चीज का हम संकल्प करते हैं, अनुकूल भाव से स्वीकार करते हैं और कुछ चीज का त्याग करते हैं। जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं ये भक्ति है, लेकिन एकादशी को अन्न का त्याग करते हैं तो यह भी भक्ति है। और भक्ति में दोनों कार्य होता है। मन के स्तर पर भी कुछ चीज स्वीकार करना होता है और कुछ चीज का त्याग करना होता है। और वाणी के स्तर पर भी भगवान के कीर्ति का गान करते हैं यह भक्ति है, लेकिन इसके साथ ही विष्णु का वैष्णव का निंदा का त्याग करना होता है। इसके लिए भी चेष्टा करना है कि हमारे वाणी से कोई निंदा न निकल जाए। तो इस प्रकार ये अनुशीलन शब्द का दो पक्ष है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और इसके तीन स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। और अनुशीलन शब्द भाव रूप भी होता है। अनुशीलन शब्द का अर्थ एक तो चेष्टा रूप होगा और दूसरा भाव रूप। भाव में प्रीति और विषाद होता है, दो पक्ष होता है। कोई कोई मन में भाव आता है तो उससे प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, वह भी भक्ति है। और कोई कोई ऐसा भाव है कि जिससे दुख की अनुभूति होती है, वह भी भक्ति है। तो ये जो कृष्णानुशीलन शब्द है, अनुशीलन शब्द है, तो ये चेष्टा रूप है और भाव रूप है, दो स्तर है इसका। तो इस प्रकार भक्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। तो हम लोग भगवान का नाम बोलते हैं, अर्चन करते हैं, यह वाचिक भक्ति है, शारीरिक भक्ति है। इसके साथ से ही कुछ मानसिक स्तर पर भक्ति करना होता है। कुछ भक्ति के अंग ऐसे हैं जिसका मन से बहुत संबंध है, वे मानसिक रूप से किया जाता है। और जो व्यक्ति इस तीनों को मिला करके भक्ति करता है तो उसकी प्रगति द्रुत होती है, तेज होता है। जो व्यक्ति शरीर से भी भजन कर रहा है और मन से भी कर रहा है, वाणी से कर रहा है, वह व्यक्ति सिद्धि जल्दी लाभ करेगा। कभी कभी किसी किसी भक्ति के विषय में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पुराने भक्त लोग हैं, प्रायः नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो और भक्ति तो समझ में आ जाती है। अब मैं किसी से पूछ दूं कि सख्यम का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। बहुत भक्त उत्तर दे सकते हैं, कुछ लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं कि ये सख्यम भक्ति क्या है। ये भी साधन भक्ति है। प्रहलाद में कहते हैं क्रियते अध्याय, इसको भी करना होता है। और सख्य भक्ति करना है तो इस भक्ति का आचरण हम कैसे करेंगे, कुछ व्यवहारिक गाइडलाइन चाहिए, कुछ व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए ना। नवधा भक्ति का आचरण कर रहे हैं, आरती में भाग ले लेते हैं, खड़ा होते हैं, कोई पुजारी आरती कर रहा है तो अर्चन कर रहा है, जो भक्त सामने भगवान के खड़ा हो गया, भगवान के सामने खड़ा हो गया, वह भी अर्चन कर रहा है, वह भी अर्चन भक्ति में भाग ले रहा है। तो ऐसे कुछ भक्ति तो बिल्कुल आसान है, मंदिर बहारते हैं, कीर्तन करते हैं, अस्पष्ट है। लेकिन सक्षम भक्ति है, इसका आचरण कैसे करते हैं, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं, और इसकी भी परिभाषा बिल्कुल अस्पष्ट है। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो सक्षम की परिभाषा दी हुई है, विश्वास मित्र वृत्तिश्च। सक्ष भक्ति क्या है तो अस्पष्ट परिभाषा है, विश्वास मित्र वृत्तिश्च, विश्वास और मित्र की वृत्ति, मित्र जैसा आचरण करना। लेकिन फिर भी कुछ अस्पष्ट नहीं हो रहा है, और मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो कहे हैं वह सत्य है, वह अवश्य घटित होगा। ये निरंतर ऐसा विश्वास रखना यह भक्ति है, सत्य भक्ति है। तो महाभारत में एक श्लोक आया है, द्रौपदी की उक्ति है, तो वो कहती है द्रौपदी के, हे गोविंद, आप प्रतिज्ञा किए हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, तो प्रतिज्ञा गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संचिंत्य संचिंत्य धारयाम्य हम जीवनम, ऐसे है। द्रौपदी कहती है कि हे गोविंद, आप प्रतिज्ञा किए हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, तो मैं तो आपके इसी बात का स्मरण करके अपने जीवन को धारण करती हूं। अब द्रौपदी को पूर्ण विश्वास है कृष्ण के उक्ति पर, यह सख्य भक्ति है। और विश्वास तो मन की ही वृत्ति है, विश्वास पूर्णतः मन की वृत्ति है। तो हम यह कह रहे हैं कि भक्ति में कुछ भक्ति ऐसा है कि उसको मानसिक स्तर पर अभ्यास करना होता है। मन में एक्चुअली हुआ क्या है कि ये लोग बहुत लंबा कर दिए, नीचे गिर जाता है, इसको यहाँ करके रखेंगे तब वो स्थिर रहेगा। जैसे सख्य भक्ति के विषय में हम कह रहे हैं विश्वास मित्र वृत्तिश्च। सख्य भक्ति के दो पक्ष हैं, विश्वास, तो कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए। आप पढ़ते हैं शरणागति का लक्षण, तो आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिष्यते विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। देखिए दो शब्द दे रहे हैं, अपने रक्षक के रूप में कृष्ण का वर्ण करना, यह अलग बात हुई, और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इसका विश्वास करना अलग बात। दो पक्ष हैं, वर्ण किए हैं, कृष्ण को आराध्य मान लिए, अपना रक्षक स्वीकार कर लिए हैं, तो इतना ही पूर्ण नहीं हो गया। मन में यह विश्वास होना चाहिए, और वह विश्वास निरंतर चलते रहना चाहिए कि कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, यह एक अलग अंश है। पालक के रूप में, रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना एक बात हुई, और इससे अलग बात है निरंतर कृष्ण पर विश्वास रखना, यह भक्ति है। यह मान के अस्तर की भक्ति है। और दूसरा पक्ष है मित्र वृत्तिश्च। जो मित्र का व्यवहार होता है वह करना। वे मित्र का व्यवहार क्या होता है, दो मित्र हैं तो आप देखेंगे कि वे साथ रहना चाहते हैं, काम पर है बहुत जल्दी एक साथ हो जाते हैं, वो बात करते रहते हैं, एक साथ सोते हैं। तो एक साथ सोते हैं तो कुछ भक्त लोग हैं, अब सख्य भक्ति का आचरण करने के लिए डीटी रूम में ही खाट लगा करके सो जाते हैं, लेकिन यह वैधि भक्ति के अनुकूल नहीं बैठता है। डीटी में सोना साथ में, ये वैधि भक्ति, ये रागानुगा भक्ति के लिए तो फिट है, लेकिन वैधि भक्ति में फिट नहीं बैठता है। और मित्र की एक वृत्ति और होती है, कोई भी दोस्त है तो अपने हृदय की बात बोल देता है, देखते हैं ना, दूसरे से नहीं कहेंगे, लेकिन अपना जो मित्र है उससे कुछ भी कह देते हैं। तो मित्र वृत्ति का एक अर्थ है कृष्ण से अपने मन की बात को कह देना, और बहुत भक्त ऐसा करते हैं, बहुत भक्त ऐसा करते हैं। यहाँ एक माता जी आई है, श्यामा माता, इसको मैं वृंदावन में देखा हूँ, और कृष्ण से बात कर रही है, मैं दूर से देख रहा था क्या कर रही है, लेकिन बाद में हमें लगा कि यह सख्य भक्ति है, अपने हृदय की बात सीधे कृष्ण से कहना, यह मित्र वृत्ति है। वैसे शरणागति का यह एक अंत है, आत्मनिक्षेप कार्य, अपने को व्यक्त करना, तो शरणागति में ये बात है, सख्य भक्ति में भी यह है। मित्र वृत्ति का अर्थ हुआ अपने हृदय की बात को कृष्ण से कह देना, तो यह सख्य भक्ति है। तो हम यह कह रहे थे कि कुछ चीज का मन से आचरण करना होता है, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उसमें विश्वास, कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, और यह विश्वास का भाव, यह विचार निरंतर चलते रहना चाहिए, इसको अनुशीलन कहेंगे। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं श्रीमद् भागवतम से, आप श्रीमद् भागवतम में कथा पढ़ते हैं, जब भगवान मथुरा में थे तो उद्धव को ब्रज में भेजे, उद्धव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन भगवान ऐसा अनुभव किए कि उद्धव को ज्ञान बहुत है, बहुत तत्व जानता है, लेकिन कुछ कोर्स में पीछे है। यह गोपियों के प्रेम को नहीं समझ रहा है, कृष्ण प्रीति विज्ञान में यह अभी दक्ष नहीं है। उसका कारण यह था कि एक बार की घटना है, एक उद्धव और कृष्ण मथुरा में यमुना जी के किनारे थे, तो ऐसे उद्धव जी बैठे थे और कृष्ण यमुना में आचमन कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, तब तक एक कमल का फूल उनके पैर से लगा, वो यमुना जी के धारा में बहते हुए आ रहा था, कृष्ण उस फूल को अपने हाथ में उठाए और कमल के गंध से कृष्ण को राधा रानी के अंगों का स्मरण हो आया, राधा रानी के अंग में दिव्य गंध है, तो गंध उद्दीपन का कार्य किया। वैसे ही कृष्ण गोपियों के विरह में बहुत विकल रहते थे और राधा रानी के गंध को पा करके उनकी विकलता और बढ़ गई। कुछ कहते हैं कि उस कमल पर ही राधा रानी पत्र लिखी थी, ऐसा होता था, गोपियां कृष्ण के विरह में थी तो कृष्ण को संदेश दिया करती थी पक्षियों से, या यमुना जी में वे चिट्ठी डाल देती थी कि हो सकता है कृष्ण को यह चिट्ठी मिल जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस कमल को उठाए तो उस पर राधा रानी का पत्र भी था। और पत्र पढ़ करके कृष्ण बिल्कुल अधीर हो गए, तट पर आकर के बैठ गए और एकदम विह्वल हो गए। उद्धव बहुत आश्चर्य में पड़े कि ये कृष्ण को क्या हो गया। उद्धव तो मित्र है, पूछने लगे कि क्या तुमको हो गया, ऐसे तुम अधीर क्यों हो रहे हो। कृष्ण चुपचाप बैठे थे, लेकिन कुछ देर के बाद बतलाए कि व्यों का स्मरण हो आया। और उद्धव कृष्ण को समझाने लगे, एकदम पुरुष हो ना, आदमी हो ना, अरे धैर्य रखना चाहिए। सब कोई प्रेम करता है, सबकी प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन इतना अधीर नहीं होना चाहिए। वो ब्रज के गांव के लड़कियों के प्रेम में तुम इतना अधीर हो गया, धैर्य रखो। भगवान तो धैर्य धारण कर लिए, लेकिन समझ गए कि उद्धव गोपियों की स्थिति को नहीं समझ रहा है, उनके प्रेम को नहीं समझ रहा है। हमारा मित्र है, इतना होनहार विद्यार्थी है, स्वर्ग से पढ़ करके आया है, न्याय बृहस्पति जी से पढ़ा है साक्षात, तो इस कोर्स को भी इसको कराना चाहिए। तो कृष्ण प्रीति का कोर्स अटेंड करना है, तो कृष्ण सोचे कि इस विषय के जो बेस्ट प्रोफेसर हैं उन्हीं के पास भेज दें। अब कृष्ण भेज दिए, उद्धव गए। यद्यपि कृष्ण जब भेज रहे थे उद्धव को, तो उद्धव थोड़ा अनमनस्क हो रहे थे, गोपियों को समझाने के लिए। वो गांव की स्त्रियां, कुछ संत कहते हैं, सोच रहे हैं वो अंगूठा छाप, वो पढ़ी ली, मैं स्वर्ग से पढ़ करके आया, यही असाइनमेंट हमको मिल रहा है। स्वर्ग से पढ़ करके आया और समझाने को अब ऐसे लोगों के पास भेजा जा रहा है। लेकिन कृष्ण समझाए कि तुम जाओ, मत संदेशर विमोचय, हमारी कुछ बात कह करके उनको उबारो, वह विरह समुद्र में डूब रही है। धार यत्यत कृच्छेण प्राय प्राणन कथंचन, अरे वे किसी तरह अपने प्राण को धारण की हैं, तो जा करके मेरा संदेश दे करके उनको उस विरह समुद्र से ऊपर कर। कृष्ण गए, उद्धव गए ब्रज में, और नंद महाराज उनका अधोक्षज दिया, कृष्ण जैसा ही सत्कार किए, आलिंगन किए और उनसे बात करने लगे। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया कि बहुत प्रश्न पूछ रहे थे यादवों के विषय में, कंस कैसे मारा गया, कृष्ण बलराम के विषय में। तो एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, उद्धव जी भी उत्तर दे रहे थे, दोनों का प्रेम था। जब अपने प्रेमी के विषय में कोई बात करता है तो थकता नहीं है, तो एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, ये दोनों बात कर रहे थे तो पूरी रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता कृष्णस्या नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, नंद महाराज का और कृष्णानुचर का उद्धव का। तो रात बीत गई, गोप्य समुत्थाय समर्च्य वास्तुन समर्च गोप्य समुत्थाय उद्दीप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च दधिन्य मंथर। अब रात बीत गई तो गोपियां जगी और दीपक जला करके वास्तु पूजा इत्यादि करके और दधि मंथन करने लगी। तो दधि मंथन कर रही हैं, तो गोपियों का वर्णन किया गया है कि तादीप दीप्तेर मणिभिर बिरेजु, गोपियां बहुत सुंदर लग रही थी। कैसे सुंदर लग रही थी, सादीप दीप्त दीपक जलाई थी तो दीपक के प्रकाश से उनके आभूषण में जो मणियां थी वे और प्रकाशित हो रही थी, तो इससे बहुत सुंदर लग रही थी। तो स्पष्ट है कि गोपियां आभूषण धारण की हैं। और भी वर्णन है कि चलत नितंब स्तनहार कुंडल तिसो रसत कुंकुम आनना, वे दधि मंथन कर रही हैं तो उनका हाथ चल रहा है और गहना पहनी है, हार पहनी है, वह हिल रहा है, स्तन हिल रहा है, नितंब हिल रहा है, पत्र हिल रहा है। तो गोपियां बहुत सुंदर लग रही हैं, उनका वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है और उनके अंग बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो दीप का प्रकाश कुंडल पर पड़ रहा है और कुंडल के से रिफ्लेक्ट होकर के उनके गालों पर पड़ रहा है, वे बहुत सुंदर लग रही हैं। और गोपियों का वर्णन है कि उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, वे उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, कृष्ण के विषय में उच्च स्वर से उद्गायन कर रही, उच्च स्वर से गा रही हैं। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम, ब्रजांगना नाम दिवमस्पृशद ध्वनि। और ब्रजांगनाएं इतने ऊंचे स्वर में गा रही थी कि वह ध्वनि स्वर्ग तक जा रहा था, दिवम अस्पृशद स्वर्ग को छू रहा था। स्वर्ग का स्वर्ग लोक अर्थ है, या सौ धनुष ऊपर के स्थान को स्वर्ग कहते हैं, एक धनुष मतलब चार हाथ, तो जो अर्थ लीजिए। और कह रहे हैं कि दबनस्त निर्मंथन शब्द मिश्रित हो निरक्षते जैन दिशा मंगल। और ये गा रही हैं, जोर से गा रही हैं, और उनके आभूषण चूड़ियों का आवाज आ रहा है और दधि की आवाज आ रही है, तो ये सब मिल करके बहुत मंगल संगीत उत्पन्न हो रहा है। निरस्यते जैन दिशा मंगलम, सारी दिशाओं के अमंगल दूर हो रहा है, सब लोग पवित्र हो रहे हैं उनके गीत से। तो गोपियां आनंद से गीत गा रही हैं और सारी दिशाओं को पवित्र कर रही हैं। यहाँ जो उद्धव जी देख रहे हैं कि गोपियां बहुत शोभित हो रही हैं। सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्रेयसी का प्रियतम दूर है तो ये प्रायः श्रृंगार नहीं करती हैं और बहुत खिन्न रहती हैं, लेकिन गोपियों का वर्णन है कि बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत श्रृंगार धारण कर रही हैं और ऊंचे स्वर में गा रही हैं। यह वर्णन सुन करके, यह वर्णन पढ़ करके मन में प्रश्न उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा गोपियां कर रही हैं। तो इसका उत्तर दिया गया है कि गोपियां अध्यास वश आदत वश श्रृंगार धारण किए हैं। और भी कई एक उत्तर दिया गया, एक उत्तर है कि गोपियों के मन में विश्वास है कृष्ण के उक्ति पर, कहे थे आयास्य मैं आऊंगा, तो गोपियों को विश्वास है कि कृष्ण अवश्य आएंगे, तो ये रोज इस विश्वास पर विचार करती थी। विश्वास इतना प्रबल था कि रोज यह विचार उनके मन में आता था कि कृष्ण आज नहीं आए तो कल अवश्य आएंगे। तो कृष्ण आएंगे तो उनको कुछ खिलाने के लिए चाहिए, जहां भी प्रेम है तो प्रेम कुछ देना चाहता है, प्रेम ऐसे खाली खाली नहीं चलता है, प्रेम का यह स्वभाव है कि कुछ प्रदान करना चाहता है। तो गोपियों को विश्वास था कि आज कृष्ण नहीं आए तो कल अवश्य आएंगे, इसलिए वे दही जमाती थी और सुबह ही मान तैयार करती थी कि कृष्ण आएंगे, 10 किलोमीटर दूर से आएंगे, भूखे होंगे तो कुछ भोजन के लिए चाहिए, कुछ खिलाने के लिए चाहिए। तो रोज के रोज वे मक्खन तैयार करती थी, रोज तैयार करती थी, और रोज निराशा में परिणत होता था, कृष्ण संध्या तक आते नहीं थे, लेकिन फिर भी गोपियों का विश्वास खत्म नहीं हुआ। रोज के रोज उनके मन में यह विश्वास था कि आज कृष्ण अवश्य आएंगे। तो यह जो विश्वास है यह मन की वृत्ति है, और निरंतर इस विश्वास को बनाए रखना यह है अनुशीलनम। अनुशीलनम, अनु मतलब निरंतर, हम लोग तो निराश हो जाएंगे, लेकिन भक्ति का अर्थ है इस विश्वास को बनाए रखना। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं कि हम अपने भक्तों को अभय दान करेंगे, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मी इति याचते। जो व्यक्ति एक बार कृष्ण का शरणागति स्वीकार करके और कह दिया कि हे कृष्ण मैं आपका हूं, तो कृष्ण कहते हैं कि अभयम सर्वदा तस्मै ददामि इति व्रतम मम, उसको सदा सर्वदा के लिए मैं अभय प्रदान करूंगा, यह मेरा व्रत है। तो सख्य का अर्थ है इस उनके वचन पर विश्वास करना, कृष्ण पर विश्वास करना कि वे वचन दिए हैं तो हमें अभय दान देंगे ही, हमारी रक्षा करेंगे ही। तो अवश्य रक्षिव कृष्ण विश्वास पालन, तो यह भक्ति स्वरूप है। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि यह जो कृष्णानुशीलनम शब्द है, तो अनुशीलन तीन स्तर पर है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और वाणी के स्तर पर। तो हमें मन के स्तर पर भी कृष्ण का अनुशीलन करना चाहिए, भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, तब हम जल्दी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न, टाइम है कि समाप्त हो गया? दो तो बज गया ना, ढाई बजे तक होता, हमसे तो कहे थे कि दो बजे तक है, मैं बहुत जल्दी कर दिया। पहले बताना चाहिए था हमको, तो कहे कि एक से दो होता है, तो उस हिसाब से मैं जब कर दिया। प्रश्न पूछिए तब, कुछ भक्ति के विषय में कुछ प्रश्न पूछिए।
भक्ति और ज्ञान अलग अलग है कि भक्ति ही ज्ञान है, ज्ञान ही भक्ति है? इसे कुछ लोग जानते सब हैं, करते नहीं है। हाँ। और कुछ लोग कुछ नहीं जानते, कभी लगे रहते हैं।
हाँ, इनका प्रश्न है कि भक्ति और ज्ञान एक ही है कि अलग अलग है? यह समझिए, ना तो स्पष्ट समझिए कि यह अलग अलग है, और इसी बात को समझाने के लिए ये कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बहुत लोगों के मन में यह संशय हो जाता है कि ज्ञान भी भक्ति का ही अंग है, एक होने की तो बात दूर है, यह भक्ति का अंग भी नहीं है। कुछ अंश तक यह भक्ति में सहायक है, कुछ अंश तक। और ज्ञान का तीन स्तर होता है, एक को कहते हैं तत् पदार्थ का ज्ञान, और दूसरा त्वम पदार्थ का ज्ञान, और एक अभेद ज्ञान। और भगवान के विषय में कुछ ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है, तो वह भक्ति में सहायक है, इसी से भगवान अपने विषय में ज्ञान दिए हैं। और जीव अपने स्वरूप के विषय में जानता है तो यह भी सहायक है। लेकिन कुछ लोग जैसे मायावादी लोग यह ज्ञान विकसित करना चाहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, तो यह भक्ति का विरोधी है, यह भक्ति का विरोधी है। तो प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान कुछ सीमा तक भक्ति का सहयोगी है, भगवान के ज्ञान से भक्ति के तरफ प्रवृत्ति लगती है, इस दृष्टि से ज्ञान सहयोगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान भक्ति से बिल्कुल भिन्न चीज है, और भक्ति के तीव्रता को यह कम कर देता है। आप देखते हैं कि मार्केट में कोई एसिड होता है और भी रसायन है, तो वो तीव्र है, लेकिन उसमें कुछ मिलावट कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो कोई एसिड है तो वो बहुत क्रियाशील रहेगा, लेकिन पानी डाल देंगे तो उसके क्रिया शक्ति शिथिल हो जाएगी। तो सच्चाई यह है कि यदि भक्त में ज्ञान का मिश्रण करते हैं तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए ज्ञान का अलग से अनुशीलन करने का विधान नहीं है, भक्ति का निरंतर अनुशीलन करना है। लेकिन भक्तों के लिए ज्ञान के अनुशीलन का प्रयास ही नहीं करना है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंत सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता स्मृतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो जित जित अब त्रिलोक क्या। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो अजित हैं त्रिलोकी में जिनको कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञाने प्रयास मुदपास्य ज्ञान का प्रयास उत्पास्य दूरतः अपास्य दूर से ही छोड़ दिया है। ज्ञान का प्रयास का अर्थ हुआ तीर्थ भ्रमण आदि। तीर्थ भ्रमण से ज्ञान होता है, रियलाइजेशन होता है। तो ज्ञान के प्रयास को दूर से ही छोड़ दिया। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य उत्त अपास्य एकदम दूर से, कोई उसके लिए प्रयास नहीं। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंत सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम भगवान की कथा हो रही है। भवदीय वार्ताम भगवान की वार्ता, या जो भवदीय हैं भगवान के व्यक्ति हैं भक्त हैं उनकी वार्ता। स्थाने स्थितम श्रुतिगताम किसी स्थान में है, किसी मंदिर में है, आश्रम में है और वहां भगवान की कथा हो रही है, कान में पड़ रही है, तो उस कथा के लिए आपकी आदर बुद्धि है। तनुवांग मनोभिर विदधन नमस्ते, उस कथा का आप सत्कार कर रहे हैं वाणी से, शरीर से और मन से। कथा को नमस्कार कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कथा को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। ये मन से सत्कार करना हुआ। और कथा में बैठे तो वक्ता को नमस्कार करके, भागवत जी को नमस्कार करके और भक्तों को नमस्कार करके ये बैठते हैं, तो कथा का सत्कार करना हुआ। या कथा का सत्कार शरीर से करना हुआ कि निरालस्य हो करके या हाथ जोड़ करके बैठे हैं, तो ये कथा को नमस्कार करना हुआ। तो कुछ आचार्य अर्थ करते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके कान में जो कथा पढ़ रहा है वो आश्रम में स्थित होकर के केवल कथा का सम्मान करते हुए और केवल जी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो जो भगवान त्रिलोकी में अजित हैं, कोई जीत नहीं पाता है, उस भगवान को भी जीत लेता है वह। और तनुभिंग मनो भी भगवान मौन वचन और इंद्रिय सहित जीत लिए जाते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान उस भक्त के इतने अधीन हो जाते हैं कि वह कुछ बोलता है तो उसका उत्तर देते हैं, मतलब उसके वाणी, भगवान के वाणी पर भी अधिकार हो गया है। वह स्पर्श करता है तो भगवान भी प्रति उत्तर देते हैं। वो भक्ति के अधीन है भगवान, उससे प्राप्त होते हैं। कभी ज्ञान से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ज्ञानियों के लिए बहुत दुर्लभ है भगवान, लेकिन भक्तों के लिए बिल्कुल सुलभ है। तो मैं एक कथा को नमस्कार करते हुए ऐसा एक अर्थ कर दिया। दूसरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ दिया, भगवान की कथा सुन रहा है और भगवान को नमस्कार कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो भगवान लिए जाते हैं, उसके साथ भगवान चलने लगते हैं। और भगवान का ऐसा स्वभाव है, एक श्लोक में कहा गया है, बिलोमंगल ठाकुर जी का श्लोक है शायद, वे कहते हैं कि गोपालांगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। कह रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है कि भगवान गोपालांगन कर्द में बिहर से, गोपाल के आंगन में विहार करते हैं। कोई गोपाल है, गाय का पालन करने वाला है, तो उसके आंगन में कीचड़ होगा और बरसात का दिन है तो बहुत कीचड़ फैल जाता है। हम लोग हील कहते हैं, गोबर पानी में मुंह में मिल जाए तो हील है। लेकिन वैसे स्थान पर बिहर से विहार करते हैं और विप्रा धरे लज्ज से, जहाँ बहुत पोत करके लीप करके पवित्र स्थान है, वेदी बनाया गया है, वेद मंत्र से आह्वान करते हैं, लेकिन वहाँ भगवान आने में लज्जा महसूस करते हैं, विप्रा धरे लज्ज से। और ब्रूसे गो सत हुंकते स्तुति सते मौनम विधत्ते सताम। सताम का अर्थ है ज्ञानी। ज्ञानी लोग सैकड़ों सैकड़ों श्लोकों से स्तुति करते रहते हैं, लेकिन मौनम विधत से भगवान चुपचाप मौन धारण करते हैं, सुन लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन ब्रू से गो सत हूं कृते, लेकिन कोई बछड़ा हूं करता है एक बार अपने बोली में, तो कृष्ण 10 बार पूछते हैं, प्यास लगी है, बछड़े से बात करते हैं, एक बार बोल दिया 10 बार उससे पूछेंगे। लेकिन ज्ञानी लोग सैकड़ों सैकड़ों स्तुति से श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं मौनम विधत से। और गोकुल दास्यम गोकुल सुंदरी सुकुर से स्वाम्यम न धृतात्मनाम। योगी लोग योगाभ्यास से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, उन्हें चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण आकर के बसे और हमारे हृदय का चालन वे करें, वे चालित करें, उनका कंट्रोल हो। लेकिन भगवान स्वामी नहीं बनते हैं योगियों का, लेकिन दास्यम गोकुल सुंदरी से कुरी से। लेकिन गोकुल के स्त्रियों का वो नौकरी करते हैं, दास्य करते हैं। गोकुल की स्त्रियां कहती हैं कि लाला ये खांची उचैयो, तो गोबर भर करके और कहती हैं कि उचैयो इसको उठा दो, तो कृष्ण नौकरी स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं कि खैरात में उठा दें, कभी कभी देखा जाता है कि वो नेगोशिएट करते हैं, समझौता होता है कि कितना फीस कितना वेतन दोगी, वो वेतन निर्धारित करते हैं कि उठा देंगे लेकिन वेतन चाहिए। और गोपियां भी तैयार हैं कि भाई ठीक है वेतन ही ले लो, तो निर्धारण होता है कि एक बार उठाओगे तो एक लूंदा मक्खन मिलेगा। तो कृष्ण तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है उठाऊंगा, नौकरी करते हैं वेतन फिक्स करके। और फिक्स वेतन पर भी उनको संतोष नहीं होता, उस कभी कभी बेईमानी भी करते हैं, भाई गिनती कैसे किया जाएगा। गोपियां कहते हैं सीधा सा गणित है, गोबर है हम टिक कर देंगे, अभी टिक कहाँ करेंगे, एक बार उठाए तो कृष्ण के गाल पर ही गोबर लगा देती हैं। और गोपियां गोबर ले करके गई तो कृष्ण अपने से भी गोबर लगा लेते हैं कि कुछ ज्यादा वेतन मिले। तो दास्यम गोकुल सुंदरी सिकुर से स्वाम्यम न धृतात्मना ज्ञातम कृष्ण तवांग पंकज युगम प्रेमैक लभ्यम परम। इन घटनाओं से स्पष्ट है, कह रहे हैं कि ज्ञातम ये पता चल गया कि आपका चरण कमल केवल भक्ति से प्राप्त हो सकता है, भक्ति से केवल लभ्य है। आप यशोदा जी के प्रसंग में पढ़ते हैं तो ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है भगवान, ज्ञान के बल से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, भक्ति से ही केवल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और केवल भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान तो स्वतः हो जाता है, सामान्य ज्ञान की बात तो दूर है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। भगवान के ज्ञान की भी बात है, भगवत तत्व के अपने संबंध के ज्ञान की बात है, तो इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। ये भक्ति का स्वभाव है, स्वरूप है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति भवंत चैत त्रिक एक काल। आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के साथ ही दो चीज और हो जाएगा, भगवान का ज्ञान और विषय से वैराग्य, जगत से वैराग्य। भक्ति करने से ये दोनों अपने आप हो जाता है। तो इसलिए अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति ज्ञान के फेरे में पड़ता है तो भक्ति की गति शिथिल हो जाती है। इसी से श्रीमद् भागवतम में सलाह दिया गया है कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति जोगे न यजेत पुरुषम परम। किसी व्यक्ति के मन में कामना है या निष्काम है या मोक्ष चाह रहा है, उसको तीव्र भक्ति से यजन करना है। तीव्रेण भक्ति जोगे न, तीव्र भक्ति योग से। तीव्र भक्ति योग का क्या अर्थ है कि इसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। कोई एसिड है तो वो बहुत तीव्र है, लेकिन उसमें पानी मिला देंगे, कुछ और मिला देंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार भक्ति में कर्म या ज्ञान का मिलावट कर देते हैं तो भक्ति की तीव्रता कम हो जाती है। तो आप यह जो पूछ रहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति क्या एक है, तो इतना तो स्पष्ट है कि यह एक नहीं है, बल्कि यह भक्ति का विरोधी चीज है कुछ सेंस में। इसलिए ज्ञान के अनुशीलन का कहीं विरोध नहीं किया गया। ज्ञान का अनुशीलन छोड़ करके केवल भक्ति का अनुशीलन करना है। जो आवश्यक ज्ञान है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इस बात पर भक्ति रसामृत सिंधु में जहां भी भक्ति का निरूपण है तो यह बहुत जोर दे करके कहा गया है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, ये भक्ति से भिन्न पदार्थ है, बहुत महत्व के पदार्थ। दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान की बहुत महिमा है, यहाँ तक कि कुछ दृष्टि से भक्ति में भी वह सहायक है। लेकिन जब ही उच्चतर भक्ति की बात है, तीव्र भक्ति की बात है, तो ये भक्ति के गति को कम करने वाला, इसलिए कभी मिश्रण नहीं करना चाहिए। हमारी कोई समस्या है, कोई इच्छा है, शुद्ध भक्ति का आचरण करना चाहिए। ज्ञान और कर्म का मिलावट करने से भक्ति की तीव्रता कम हो जाती है। इसी से उत्तमा भक्ति के लक्षण के में कहा गया है कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, यह भक्ति से भिन्न है। इससे इस यह उपाधि है, यह भक्ति को ढक देता है, इससे इसको बचाना चाहिए। इससे दोनों को एक कभी नहीं समझना चाहिए। आए हाँ, प्रभुपाद जी के पुस्तक में आप कह रहे हैं कि ज्ञान को ही भक्ति कहा गया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यह ज्ञान है कि भक्ति है? अच्छा, ये प्रश्न है, बहुत सुंदर। देखिए, यही तो बात है, यह भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में तो भगवान के कीर्ति को लिखा गया है, तो उसको पढ़ना, शास्त्र का अनुशीलन करना, शास्त्र का आदर करना, यह भक्ति है। आप 64 प्रकार के भक्ति पढ़ेंगे तो तदीय सेवान, एक भक्ति है कि कृष्ण से जो संबंधित चीज है उसका सेवन करना। तो चार चीज की ना है, तुलसी, वैष्णव, शास्त्र और अश्वत्थ वृक्ष, ऐसे है। तो शास्त्र का अनुशीलन करना यह भक्ति है, शास्त्र पर फूल चढ़ाना प्रणाम करना यह अनुशीलन यह भी भक्ति है, लेकिन शास्त्र को पढ़ना या सुनना सबसे बड़ा अनुशीलन है, सबसे बड़ा सत्कार है। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना या कोई भी शास्त्र पढ़ना यह भक्ति है, और इस भक्ति का आचरण करेंगे तो ज्ञान स्वतः हो ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो आवश्यक ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्ति का स्वभाव है कि ज्ञान वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाते। वासुदेव भगवते भक्ति योग प्रयोजित जनय त्यास वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम। निष्काम भाव से केवल भक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं तो ज्ञान वैराग्य जितना आवश्यक है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ने या कोई भी शास्त्र पढ़ना यह भक्ति है, नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। नियम पूर्वक का अर्थ है कि कुछ नियम ले लें तो अच्छा है, नहीं तो यह भी नियम है कि हमें जब टाइम मिले तो एक श्लोक दो श्लोक ये पढ़ना है, एक शास्त्र पढ़ना भक्ति है। आप देखेंगे जो हम लोगों के गुरु वर्ग है, बड़े बड़े आचार्य हैं, तो कुछ तो प्रीचिंग में उनका समय जा रहा है और कुछ प्रोजेक्ट है उसमें जाता है, लेकिन अधिकांश समय तो शास्त्र पढ़ने में ही जाता है, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ने में ही जाता है, भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना यह भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट ये लिखा गया है, तदीय सेवन उसमें शास्त्र का अनुशीलन शास्त्र पढ़ना यह भक्ति है।
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.